ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को आज मंजूरी दे दी। भारतीय जनता पार्टी, तेदेपा और कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने विधेयक के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। वाईएसआर पार्टी के नेता मिथुन रेड्डी का कहना था कि उनकी पार्टी विधेयक के वर्तमान स्वरूप को प्रदेश के हित के लिए खिलाफ मानती है। कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी पूरा किया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यह कहने में खुशी हो रही है कि इस संबंध में आंध्र प्रदेश विधानसभा से आए संकल्प पर लोकसभा में सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में 28 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार से राज्य की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की कुछ धाराओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक में उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अमरावती एक नई राजधानी होगी। श्री राय ने सदन को बताया कि राज्य विधानसभा के 28 मार्च 2026 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से 2014 के अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इससे पहले सरकार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में यह कदम उठाया है। ये प्रस्तावित कानून अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी बनाने के निर्णय को भविष्य में बदल दिए जाने के किसी भी ऐसे प्रयास को रोक देगा, जैसा कि वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद वर्ष 2014 से 2019 के बीच राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में तेदेपा प्रमुख नायडू ने घोषणा की कि अमरावती राज्य की राजधानी होगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार से आग्रह किया कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। टैगोर का कहना था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग अधूरी है। ये वादा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन के पटल पर किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को पूरी तरह लागू किया जाए, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध करते हुए लोकसभा से बहिर्गमन किया। सदन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता मिथुन रेड्डी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अमरावती का निर्माण किसानों की जमीन पर किया जा रहा है। किसानों से वादा किया गया था कि उन्हें विकसित भूखंड दिया जाएगा, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, मकान दिए जाएंगे और कई दूसरे वायदे किए गए। आज तक किसानों को एक भी भूखंड नहीं दिया गया। श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं, तो इस विधेयक का कोई मतलब ही नहीं है। राजधानी के लिए कितनी जमीन का अभी और अधिग्रहण किया जाएगा तथा कितना खर्च होगा, इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद ने दावा किया कि यह विधेयक वर्तमान स्वरूप में आंध्र प्रदेश के हित में नहीं है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले विधेयक को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की प्रतिबद्धता के कारण यह दिन देखना संभव हुआ है। तेदेपा सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 में चर्चा में भाग लेते हुए इस विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से अमरावती को राजधानी बनने से रोका, उसके लिए इतिहास उन्हें तथा उनकी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। पेमा सानी ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि अब अमरावती प्रदेश की स्थायी राजधानी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरावती को राजधानी बनाने के लिए 29,000 किसानों ने हजारों एकड़ जमीन दी है। उनका कहना था, चंद्रबाबू नायडू की प्रतिबद्धता के कारण आज हम ये दिन देख पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें नायडू का बड़ा राजनीतिक संघर्ष था। श्री पेमा सानी ने कहा कि अब आंध्र प्रदेश के लोग आशान्वित हैं कि उन्हें वैश्विक स्तर की राजधानी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीएम रमेश ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग डबल इंजन की सरकार पर विश्वास करते हैं। उनका कहना था कि भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई ने कई मौकों पर यह प्रस्ताव पारित किया था कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाए। उन्होंने तीन राजधानियों की परिकल्पना को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि क्या किसी प्रदेश की तीन राजधानियां हो सकती हैं? यह अमरावती को राजधानी नहीं बनने देने का प्रयास था। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने आज ही जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को भी पारित किया, जिसमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड के अपराध के अनुरूप संशोधित करने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा शासित 79 केंद्रीय कानूनों का यानी कुल 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें छोटी मोटी गलती पर पहले केवल चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार गलती होने पर दंड लगेगा और बाद में दंड बढ़ सकता है या अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विश्वास की संस्कृति बढ़ाना है, जो भय के आधार पर नहीं हो, कर्तव्य के आधार पर हो, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह प्रस्तावित कानून लाया गया है। श्री गोयल ने कहा कि लोगों के जीवन, छोटे व्यापार और उद्योगों को सरल बनाना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि यह विधेयक जन विश्वास नहीं लाता बल्कि विश्वास तोड़ता है। उन्होंने कहा कि यह सुधार नहीं बल्कि प्रशासनिक आत्मसमर्पण है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह विधेयक हमें व्यक्तिगत तरीके से कानून के डर को समाप्त करने के लिए कह रहा है और इसमें हर धोखेबाज को कहा जा रहा है कि यदि तुम्हारे पास पैसा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं भाजपा के तेजस्वी सूर्य ने कहा कि यह विधेयक आजाद भारत में अनेक मामूली गलतियों वाले प्रावधानों को अपराध मुक्त करने की सबसे बड़ी कवायद है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अविश्वास से विश्वास, संदेह से विश्वास की ओर ले जाता है और विकसित भारत की आधारशिला है। इस विधेयक का अध्ययन करने वाली प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे सूर्या ने कहा कि भले ही आज कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है, लेकिन प्रवर समिति में हर सिफारिश सर्वसम्मति से पारित की गई। भाजपा सदस्य ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी लाइसेंस कोटा एडमिट राज को अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था, जो कांग्रेस की ही 70 साल की नीतियों पर उनकी कठोर टिप्पणी थी। भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के आने के बाद कहा था कि उनके शासन में उद्योगपतियों को सम्मान मिलेगा और देश के विकास में भागीदार रहेंगे। समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक ने इस प्रस्तावित कानून को अपराध मुक्त के नाम से कानून को कमजोर करने वाला बताया। चर्चा में भाग लेते हुए राजद के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि जन विश्वास विधेयक असल में पूंजीपति विश्वास विधेयक है, जिससे सरकार की कॉरपोरेट मानसिकता वाला चरित्र उजागर होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद पवार के सांसद नीलेश लंके ने भी विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता राजेश वर्मा ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगा। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव, वाचक शक्ति प्रताप।
राज्यसभा ने आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों और पदोन्नति से जुड़े एक विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया तथा सरकार की ओर से भरोसा दिलाया कि ये कानून बनने के बाद इन बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में काडर का बेहतर प्रबंधन कर इसकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का परिचालन कुशलतापूर्वक करने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन बलों की कार्यप्रणाली एक सुपृष्ट एवं व्यवस्थित कमांड एवं कंट्रोल ढांचे पर आधारित है जो पलटून, कंपनी, बटालियन, सेक्टर, फ्रंटियर एवं उच्च कमान के विभिन्न स्तरों के माध्यम से संचालित होती है। श्री राय ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ढांचे की परिकल्पना प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी के अनुरूप इनमें सेना और आईपीएस अधिकारियों को दायित्व दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह अनुभव किया गया कि भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जाए, इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के माध्यम से कहीं भी किसी भी वित्तीय लाभ बाधित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से कैडर प्रबंधन को सुव्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जा सकेगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने आईपीएस की तुलना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों को देर से पदोन्नति मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से इस तरह के बलों के अधिकारियों की पदोन्नति में ठहराव आएगा और उनके अवसर कम होंगे। मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ लाया गया है। उन्होंने इसे प्रवर समिति को भेजने का सुझाव दिया। इसके बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे मंत्री के जवाब के बाद सदन से बहिर्गमन कर गए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा में तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, भाजपा के ब्रजलाल, डॉ अजीत माधवराव गोपछड़े, मयंक कुमार नायक, नरेश बंसल, मदन कुमार मिश्रा, धर्मशील गुप्ता, रेखा शर्मा, डॉ परमार जसवंत सिंह सालम सिंह, सतपाल शर्मा, राम भाई मुकारिया, निर्दलीय सदस्य गुलाम अली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की डॉ फौजिया खान और शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया। सदन में आज पश्चिम एशिया संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर ऐसे समय में राजनीति करने का आरोप लगाया जब देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को संसद में चर्चा नहीं करने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इस पर श्री रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहा है। सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा प्रश्नकाल शुरू किए जाने की घोषणा से पहले श्री रिजिजू ने सदन को देर शाम तक चलाने का आग्रह किया ताकि सरकार के विधायी कार्य निपटाए जा सकें। सभापति ने कहा कि सदन दोपहर का भोजन अवकाश नहीं लेगा और देर शाम तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 सहित अन्य कार्यों पर विचार करेगा। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की चिंताओं की अनदेखी कर अपना एजेंडा थोप रही है। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया संकट पर अल्पकालिक चर्चा के दौरान दो बार आग्रह किया लेकिन समय नहीं दिया गया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा से नहीं भाग रही और संबंधित मंत्रियों तथा प्रधानमंत्री ने पहले ही संसद में विस्तृत बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के समय में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और इसे राजनीति का विषय नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इसके बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू होने की घोषणा की। प्रश्नकाल के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और उसे पारित कर दिया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के बाद दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा हुई और इसे भी पारित कर दिया गया। सदन में चर्चा के लिए यह विधेयक कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पेश किया और चर्चा के बाद जवाब कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिया। उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली में काफी सुधार हुआ है तथा वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए की वसूली में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि विधेयक के माध्यम से आईबीसी में 12 संशोधन प्रस्तावित हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।